ओम शांति। आज हमारे बीच उपस्थित है मुंबई से आई कमलेश दीदी। हम कमलेश दीदी की सबसे प्रथम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बचपन से ही आप ज्ञान में चल रहे हैं। आपको दिल्ली से ज्ञान प्राप्त हुआ, दिल्ली सेवा केंद्र से, और तीनों बहनें ही ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं। आप यूथ विंग की मुंबई की कोऑर्डिनेटर भी है। 5000 से अधिक आपने प्रवचन किया है, अनेक स्थानों पर आपने देश विदेश अनेक स्थानों पर आपने सेवा की है। आप में तो ज्ञान और गुण कुट कुट कर भरा हुआ है। वर्तमान समय आप मुंबई सांताक्रूज सेवा केंद्र की संचालिका है। आपके लिए हम क्या कहे, दिल के उद्गार है। तारों से फूलों से सीखा है हमने, फूलों से सीखा तो हंसना है जिंदगी, फूलों से सीखा तो हंसना है जिंदगी, तारों से सीखा तो चमकना है जिंदगी, पर हमने आपसे सीखा दीदी ईश्वरीय सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना है जिंदगी, अपने आप को समर्पित कर देना है जिंदगी। तो आज का विशेष टॉपिक है तपस्वी जीवन का महत्व, जो हम दीदी के द्वारा सुनेंगे।
ओम शांति। हम सभी अपने प्यारे घर मधुबन में, चाहे शांतिवन कहो या पांडव भवन कहो या ज्ञान सरोवर, लेकिन कहने में क्या आएगा, मधुबन। वो समय के अनुसार हमारे कॉम्प्लेक्स बनते गए, एक्सपेंशन होती गई और बागदारा का स्थान मिलने का बदलता गया, बाकी है तो मधुबन ही। और जब मधुबन में आने के दिन होते हैं, मैं समझती हूँ बहुत सारे भाई बहन साल भर तैयारी करते होंगे कि समय आएगा मधुबन जाना है। हर रीति से, स्थूल रीति से भी तैयारी और सूक्ष्म रीति से भी तैयारी। तो मुझे ऐसे ही सोच रहे थे तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आई कि कैसे बाबा के बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं। तो मुझे ऐसे याद आई, कहते हैं किसी ने ये लिखी है चार पंक्तियां, कहते हैं वक्त हर चीज मिटा देता है, वक्त हर चीज मिटा देता है, सुनहरे लम्हों की याद और पुरानी यादें भी मिटा देता है, पर नहीं मिटा सकता है बाप दादा की यादें, क्योंकि वक्त खुद ही समय आने पर याद दिला देता है। है ना ये बात सही कि जैसे ही समय आता है, आप देखिए बाप दादा की सीजन शुरू होने वाली होती है, या जो निमित बहने हैं जब वो मीटिंग से, एनुअल मीटिंग से जब जाती हैं, तो सब भाई बहनों के मन में ये सवाल होता है कि बाप दादा की डेट्स कब हैं। तो ये प्यारे बाबा से मिलन का मौका बाबा ने हमें इतना अच्छा अवसर दिया है, लेकिन साथ साथ जैसे हम बाबा से मिलते हैं, तो मिलने के साथ साथ जैसे मिलने की खुशी, मिलने का उमंग और उत्साह है, उसी प्रकार बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने का, और वो भी समय पर प्राप्त करने का, वो भी हमारा एक उमंग उत्साह होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जैसे इस सीजन में किस तरह से बाप दादा और ड्रामा की हमने एक विचित्र लीला देखी, वो आप सब जानते ही हैं। और प्यारे बाप दादा का क्या इशारा है हम बच्चों के प्रति कि अब केवल कहने का समय नहीं है, या केवल सुनने और सुनाने का समय नहीं है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो समय है अनुभव करके औरों को कराने का, क्योंकि हमारा सुनाना भी तब दूसरों के दिलों पर या मनों पर छाप छोड़ता है जब उसमें हमारा अनुभव हो। तो ये जो हमारा जीवन है जिसको हम योगी जीवन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जिसको हम तपस्वी जीवन कहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वर्तमान समय कहने और सुनने की बजाय ज्यादा से ज्यादा अभी योग तपस्या करने का समय है, क्योंकि समय अनुसार बाबा से मिलने की विधि बदली भी सही और भी परिवर्तित होगी। हमें याद आता है, आप सोचिए जब साकार बाबा थे, हम भी साकार बाबा से मिले, तो ऐसे बाबा से एक ही छोटा सा कमरा, बाबा बैठे और हम बाबा से मिल रहे हैं। बाबा अव्यक्त हो गए, अव्यक्त होने के पश्चात पांडव भवन का बाबा का कमरा कितना बड़ा है आप सोचिए, अभी तो डबल है, पहले तो इससे आधा था। और अव्यक्त बाप दादा का उसमें आना होता था और बाबा से ऐसे हम मिलते थे। फिर उसके बाद अपना हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन और अभी डायमंड हॉल। और ओम शांति भवन में भी बाबा पहले पर्सनल मिलते थे, फिर ग्रुप ग्रुप से मिलने लगे, कभी माताओं का ग्रुप। तो अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं समय अनुसार विधियों में परिवर्तित हो रहा है। और बाबा चाहते हैं, अभी तो बाबा मूल वतन से यहाँ साकार वतन में आते हैं, लेकिन बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं कि बच्चे अभी बाबा से सदैव मिलन मनाते रहे, चाहते हैं ना बाबा ऐसा। तो जब बाबा ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़े उसके लिए? तो जरूर हमारी जो योग की अवस्था है, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा तपस्या कहते हैं, भक्ति मार्ग में उसको साधना या तप कहा गया है, तो ऐसा लगता है अभी उस तप को, उस साधना को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना जितना हमारी वो तपस्या बढ़ेगी, उतना उतना क्या होगा, उतना उतना बाबा से हमें न केवल जब हम बैठकर वो साधना करते हैं, लेकिन हमें चलते फिरते बाबा के उस साथ का अनुभव, उस जो तपस्या का जो प्रत्यक्ष फल होता है, उसका अनुभव अपने जीवन में दिखाई देगा। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप तपस्वी राज हो, तपस्वी मूर्त हो, ये बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं। तो ये जो तपस्या है, ये हमें क्या बनाती है और ये तपस्या कैसे हम कर सकते हैं, तो इस पे थोड़ी सी हम आज शेयरिंग करेंगे, क्योंकि हम सभी को तपस्या तो करनी है। तो बाबा ने जब तपस्वी राज कहा, यानी ये तपस्या ऐसी है जो हमें राज्य अधिकारी बनाती है। और राज्य अधिकारी भी किस तरीके से, सबसे पहली बात स्वराज्य अधिकारी, स्व पर राज्य, और दूसरा कौन सा है, वो है भविष्य का राज्य अधिकार। तो हमें ये जो अधिकार है वो हमें प्राप्त होता है, स्व पर राज्य और भविष्य का राज्य अधिकार, ये दोनों ही इस तपस्या के आधार से हमें मिलते हैं। और जब हम स्वराज्य अधिकारी कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी अर्थात मेरा स्वयं ही स्वयं पर अधिकार अथवा कंट्रोल, या दूसरे शब्दों में कहें कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा हुआ है कि जितनी हमारी तपस्या होगी उतना हमारा कर्मेंद्रियों की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी। भक्ति में आपने सुना होगा, कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग। अब देखिए संतों के साथ ये बात क्यों जोड़ी गई कि वो साधना करते हैं ना, ऐसे जब हम योग तपस्या करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनमें शीतलता आ जाती है। और यहाँ तक जितनी हमारी साधना अच्छी होगी, जितनी साधना श्रेष्ठ होगी, जितना हमें इसका अभ्यास होगा, आप ये देखेंगे हमारी जो बाहरी मूवमेंट्स हैं, जो शारीरिक जो हमारी हलचल होती है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे शांत हो जाती है। यहाँ तक कि जो आंखें हैं वो भी हमारी स्थिर हो जाती हैं बहुत लंबे काल तक। आंखों का झपकना वो भी हमारा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एकाग्र होकर हम बाबा को याद करते हैं और उस तपस्या में हम लीन हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या का अर्थ क्या है, लगन में मगन, उसको भी तपस्या ही कहते हैं ना, या एक में एकाग्र हो जाना, उसको भी तपस्या कहते हैं। तो जब एक में एकाग्र हो गए हम, तो क्या हो गया, मेरी आंखें जो है अपने आप स्थिर हो जाती हैं। तो पहली बात जो हम कहते हैं, तपस्या मुझे राज्य अधिकारी अर्थात हमारा कर्मेंद्रियों पर अधिकार हो जाता है। और दूसरी बात, इसी प्रकार दूसरी बात, जो राज्य अधिकार, भविष्य का राज्य अधिकार हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जितनी हमारी तपस्या होगी उसी के अनुसार हमें भविष्य आने वाली राजधानी में पद प्राप्त होगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि न केवल तपस्या हमें अधिकार दिलाती है, लेकिन तपस्या से हमारा बहुत बड़ा भाग्य बनता है। और कैसे भाग्य बनता है कि स्वयं भाग्य विधाता वो हमारा अपना हो जाता है। आप सोचिए, जो भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता बाबा वही हमारा हो जाए तो इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। फिर कुछ पाने की चाहना रहती है, क्योंकि जो भाग्य निर्माता है, भाग्य का निर्माण करने वाला है, वो मेरा अपना हो गया तो मुझे उससे सब कुछ मिल जाता है। और इससे बड़ा भाग्य दुनिया में किसी का होगा क्या, होगा क्या किसी का भाग्य। भगवान खुद कहते हैं कि बच्चे मैं तेरा, आज की मुरली सुनी आज की मुरली, कोई कोई शायद सुबह लेट आए होंगे लेकिन पढ़ी होगी या सुनी होगी आज बाबा ने क्या कहा। इस साकार दुनिया में बच्चों को भी बाप के बिना अच्छा नहीं लगता, कहा ना बाबा ने, बच्चों को बाबा के बिना अच्छा नहीं लगता और बच्चों को बाप के बिना अच्छा नहीं लगता। और बाबा कितनी बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, ये बाबा के महावाक्य हैं। आप सोचिए, वो हमारा खुद अपना हो जाए, उससे बड़ी बात और क्या है, उससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। तो हमारा ये तपस्या जो है उस भाग्य विधाता के समीप हमको लेके आती है। तो ऐसी तपस्या तो इस जीवन में करना बहुत जरूरी है। यूं तो तपस्या के कई पहलू हैं, लेकिन आज हम सारे उन पहलुओं पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं कुछ एक दो बातें ही उसमें शेयर करना चाहूंगी आपके साथ कि अगर मुझे तपस्या करनी है तो तपस्या करने के लिए हमें क्या चाहिए। वर्तमान समय जो हम ब्राह्मण परिवार के अंदर, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा बेहद का परिवार है, और इस बेहद के परिवार को देखते हुए और बाबा की जो कुछ वर्षों से, लगभग 3-4 वर्षों से बाबा के जो महावाक्य हम सुन रहे हैं, उनके आधार पर जो आवश्यकता है उसको सामने रखते हुए एक दो बातें हम आपके साथ आज शेयर करेंगे कि देखिए, बाबा ने कहा हुआ है त्याग, तपस्या और सेवा। यानी तपस्या का कनेक्शन किसके साथ है, त्याग और सेवा के साथ। तो जो तपस्या है उसका आधार है, मूल आधार वो है त्याग। और जहां पर त्याग और तपस्या है वहां सेवा करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन हमारे नैन चैन, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारे कर्म खुद ब खुद, हमारी चाल, हमारी चलन, हमारा व्यवहार खुद ब खुद सेवा करेगा। इसीलिए अगर मुझे तपस्या करनी है तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है? सबसे पहले आवश्यकता है त्याग की। और वो किस चीज का त्याग? जब मैं त्याग शब्द याद करती हूं या त्याग शब्द कहती हूं तो मुझे बाबा की वो मुरलियां याद आती हैं जब बाबा ने 1972 में बाबा की बहुत सारी मुरलियां चली हैं जिसमें बाबा ने त्याग की बात की है। और यहां तक कि इतनी अगर आप त्याग की लिस्ट निकालने लगेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा त्याग चाहिए, हाँ मैं बहुत लंबी शायद लिस्ट निकल आएगी, ठीक है ना, बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी। जैसे बाबा ने उसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात कही थी उन दिनों में, त्याग का भी त्याग, ये बाबा ने बात कही थी। और तपस्या के लिए मुझे कौन से त्याग की जो मूल आधार है, यूं तो एक लंबी लिस्ट है लेकिन मूल आधार जिसका त्याग चाहिए वो है देह भान और देह अभिमान का त्याग। देह भान जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर का भान, और देह अभिमान और जिसको हम एक शब्द अगर कहें इंग्लिश में जिसको ईगो कहते हैं, यानी देह को जो बहुत सारे लेबल्स मिले हैं, जो हम इस संसार में आकर कुछ प्राप्त करते हैं, जो हमें मिलता है उसका जो अभिमान है वो है देह अभिमान, इसको ईगो कहा जाता है। तो देह भान और देह अभिमान का त्याग अगर मुझे तपस्या करनी है, तो जब हम पहली बात करते हैं देह भान का त्याग, आप देखिए क्या होता है कि जब हम कर्म में आते हैं, क्योंकि हम सारा दिन तो कोई बैठकर योग नहीं लगाएंगे, ठीक बात है ना, बाबा ने हमें टाइटल ही दिया है बच्चे तुम कर्म योगी हो, और हमें कर्म करना है। बाबा की इन दिनों जो साकार मुरलियां चल रही हैं, आपको ध्यान होगा बाबा इसमें ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा बार बार ये बात इन दिनों साकार मुरलियां में, मैं समझती हूँ लगभग हफ्ते 10 दिन की ये मुरलियां हैं जिसमें बाबा बार बार ये कहते हैं बच्चे तुमको कोई यहाँ रहना नहीं है लेकिन तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है और सेवा करनी है। तो हम कोई सारा दिन बैठ के तो योग नहीं लगाएंगे, हम तो योगी जीवन वाले हैं, हम केवल योग लगाने वाले नहीं हैं। तो अब जब त्याग की बात आती है, जब देह भान के त्याग की बात आती है, तो उसमें सबसे पहला त्याग जब हम कहते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, कर्म करते करते हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, हम खुद को भी भूल जाते हैं कि मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली या करवाने वाली हूँ, और जिनके साथ संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी देह की दृष्टि से ही देखते हैं। होता है ऐसा जिसके भी साथ, क्योंकि जब कर्म और व्यवहार में आएंगे सारा दिन दिनचर्या में कितनी प्रकार के लोग हमारे सामने आते हैं, और जितनी प्रकार के व्यक्ति हमारे सामने आएंगे लौकिक अलौकिक, जो अपने बीकेज नॉन बीकेज या जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, सर्विस में अगर करते हैं सर्विस वाले, पड़ोसी, जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, खुद को भी हम देह मानने लगते हैं और जो दूसरे हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी हम दैहिक दृष्टि से ही देखते हैं, उसी रूप से देखते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि जैसा व्यक्ति मेरे सामने आता है, जब हम देह के रूप से स्वयं को मानते हैं और दूसरों को देखते हैं तो हमारे रिएक्शंस और एक्शंस उसी प्रकार के होते हैं, यानी जिसने जैसा बोला वैसा ही हमारा प्रतिक्रिया या वैसे ही हमारा कर्म होगा। और उसके उसका रिजल्ट क्या होता है, पहले मैंने देह की दृष्टि से देखा और उसके बाद मेरा रिएक्शन और मेरा एक्शन वैसा ही हुआ, उसके फलस्वरूप हमारे रिलेशंस में क्या होता है, हमारे रिलेशंस में या तो फ्रैक्शन या तो फ्रिक्शन, दो चीजें होती हैं, यानी हमारे संबंधों में या तो संघर्ष होता है और या फिर क्या होता है, उनमें दरारें पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े गैप्स आने लगते हैं, दूर आने लगते हैं। आप सोचिए कि अगर इस प्रकार का हमारे जीवन में होगा, संघर्ष होगा या तो कुछ संबंधों को लेकर कुछ दरारें पड़ेंगी या कुछ दूरियां हो जाएंगी, और या फिर जैसे आपको पहले कहा कि हमारे जीवन में क्या होता है, उनको दृष्टि में देखने से क्या होता है, जब उनको देखते हैं तो ऐसी जब हमारी अवस्था होगी तो ऐसी बुद्धि क्या योगान्वित हो सकती है? सोचो आप, क्या वो बुद्धि तपस्या कर सकती है? तो इसीलिए होता क्या है, आपको अनुभव होगा अपने जीवन में, ये अनुभव होगा, समझो आज किसी से थोड़ी सी बात को लेके, छोटी सी बात को लेके मन मुटाव हो गया। जैसे कभी कभी हम देखते हैं सीट को लेके कभी आपस में क्या होता है, आपस में आर्ग्यूमेंट होने लगता है, थोड़ी बात, ये मेरी सीट है, ये फलानी सीट है, ऐसा होता है ना कभी कभी, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। अब उस सीट के लिए हमने आपस में बातचीत तो की, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप अपनी मनोदशा देखिए उस समय, वो मनोदशा मेरी तुरंत बाबा में या तुरंत क्लास में मेरी बुद्धि स्थिर हो जाए या मेरा योग लग जाए, वो नहीं हो पाता है। और अगर सारा दिन मेरी वही स्थिति रहेगी तो उससे क्या होगा, तो हमारी तपस्या तो भंग हो जाएगी ना। इसलिए मुझे क्या करना है, बाबा कहते हैं सबसे पहली बात देह भान का त्याग। और जिसके लिए बाबा ने कहा कि तपस्या माना क्या, तपस्या माना क्या, तपस्या माना मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, एक वही बाबा है। तो इसलिए क्या करो, एक मैं में सारे मैं समा दो, जितने भी सारे हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था बच्चे, ये जो हम कहते हैं, और एक और बात कि तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या है, जब इस प्रकार के हम अपने जीवन के अंदर टकराव देखते हैं, जब हमारा टकराव होता है या इस प्रकार की हम बातें देखते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तपस्या का प्रत्यक्ष फल जो खुशी और चेहरे पर जो संतुष्टता दिखाई देनी चाहिए, अपने जीवन से मैं संतुष्ट हूँ, बाकी संतुष्टता तो बाद की बात है, मैं अपने ही जीवन से संतुष्ट हो जाऊं, वो मेरे जो चेहरे से खुशी दिखाई देनी चाहिए, वो खुशी दिखाई देती नहीं है। तो इसलिए क्या करें, इसलिए सबसे पहली बात ये देह भान का त्याग, यानी मेरे अभ्यास में क्या हो, हम जिसको भी देखें वो हमेशा क्या देखें, हम आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करें, किसको भी हम देखते हैं। और दूसरी बात, स्वयं को यही बार बार अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं आत्मा जैसे इन कर्मेंद्रियों से देख रही हूँ, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ या कर्मेंद्रियों द्वारा करवा रही हूँ, ये बार बार अभ्यास करें। और आप सोचिए मधुबन से ज्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती है, हम अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे वहां तो ये अभ्यास करेंगे, लेकिन अगर अभी से ही अभ्यास शुरू कर दें, इसी मोमेंट से, हम सोचेंगे हम बाद में कर लेंगे, नहीं, लेकिन इसी मोमेंट से, इसी क्षण से अगर हम ये अभ्यास यहाँ करना शुरू कर दें, तो आप सोचिए ऑटोमेटिकली जब हम अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो ये अभ्यास करने की जब आदत पड़ी होगी तो वो अभ्यास हमें कर्म क्षेत्र पर काम में आएगा। और दूसरी बात जो हम बता रहे थे, देह अभिमान का त्याग। अब देखिए वो देह अभिमान क्या है, जो मेरे पोजेशंस हैं, मेरी पोजेशंस क्या हैं, मेरी पोजेशंस जैसे हमने जिस घर में जन्म लिया, संपन्न घराना है, देखिए स्थूल बातें जैसे वैभव है, साधन है, या मेरे अपने टैलेंट्स हैं, मेरी कुशाग्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, ये जो चीजें हैं, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, दुनिया में ज्ञान प्राप्त किया या यहाँ आने के बाद ज्ञान की पराकाष्ठा जो मुझे मिली, उन सब का जो अभिमान, जिसको हमने पहले कहा आपको, जिसको कहते ईगो, यानी ज्ञान का भी कभी कभी क्या होता है, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है कि हमको उसका अभिमान आ जाता है कि मेरे जैसा तो ज्ञानी कोई नहीं, या जितना हमारे पास ज्ञान है उतना तो किसी के पास नहीं। और ज्ञानी की सबसे पहली निशानी क्या है, ऐसा हम समझते हैं कि ज्ञानी की सबसे पहली निशानी होती है उसके जीवन और व्यवहार में विनम्रता। अगर हम ज्ञानी हैं तो हमारे जीवन में विनम्रता अवश्य दिखाई देनी चाहिए, नम्रता। और नम्रता माना कहीं पर अगर झुकने की आवश्यकता पड़े झुक जाओ, उसको कहते हैं नम्रता। ये आध्यात्म की पहली पहचान है। तो इसीलिए अब आप देखिए, जब हमको इस प्रकार का अभिमान होता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसका ज्यादा डिटेल नहीं करते, जब उस प्रकार का अभिमान होता है तो टकराव होता है। और टकराव होने के कारण क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंपैरिजंस, कॉम्पिटिशंस, हम उनमें आते, एक दूसरे से अपनी तुलना करने लगते हैं। और आप देखिए, जब तुलना होंगे हमारे मन में क्लैशेस होंगे, एक दूसरे के साथ क्लैश होगा। हमारी लाइफ स्मूथ जो चले, एक तरह से हमारा अच्छी तरह से जीवन चलता रहे, वो होगा नहीं। और देखिए, बाबा ने हमें ये बता दिया है कि बच्चे अंत तक ये बातें होनी हैं और ये बातें आएंगी, ये सब होगा। सभी हमारे जैसे नहीं हो जाएंगे, सब हमारे जैसे हो सकते हैं क्या? हो सकते नहीं, हो सकते ना, तो सभी तो हमारे जैसे नहीं हो सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ जो देह अभिमान हमको बार बार आ जाता है, या हम दूसरों को देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि समझो हम नए हैं ज्ञान में, हम 4 साल से ज्ञान में चलते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है वो 14 साल से, या कोई 25 साल से, कोई 30 साल से ज्ञान में चलता है। तो आप कहते हैं ये तो देखो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इन्होंने अभी तक भी अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, तो हम क्या अपने आप को परिवर्तित करेंगे, जब ये नहीं अभी तक बदले तो हमको भी तो बदलने में टाइम लगेगा। लेकिन बाबा ने तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, बाबा ने तो हमें कोई भाई या बहन मापदंड के रूप में नहीं दिया है। दिया बाबा ने, हमारे पुरुषार्थ का मेजरिंग स्केल कौन सा है, हमारे पुरुषार्थ का मापदंड कौन सा है, हमारा रोल मॉडल कौन है, बोलिए कौन है? नहीं पता आपको तो बोलो कौन है, कौन है रोल मॉडल, कौन है साकार में रोल मॉडल, कौन है हमारे सामने? ब्रह्मा बाबा। बाबा ने कहीं पे ये नहीं कहा कि भाई या बहन, पुराना भाई या बहन वो मेजरिंग स्केल है आपका। ऐसे कोई होता है ना कि हम अपने पुरुषार्थ को किससे कैसे समझे, कितना पुरुषार्थ है, उसके लिए बाबा ने हमें एक ही मेजरिंग स्केल दिया है, वो है ब्रह्मा बाबा, उनका जीवन चरित्र। तो इसीलिए हम उनको देख के, किसी को देख के हम अपने पुरुषार्थ को कंपेयर करें उनके साथ, तो ये तो सही नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे देह अभिमान का त्याग, तो ये त्याग भी बहुत जरूरी है। जब तक ये त्याग नहीं होगा तब तक हमारी तपस्या नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा दुनिया में भी माना जाता है, ईगो क्लैशेस आर द बिगेस्ट क्लैशेस। आज दुनिया में जो टकराव हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी भी स्केल पर हो, सबसे ज्यादा आज जो संघर्ष है वो इसी अभिमान के कारण है। इसलिए हमें क्या करना है, देह अभिमान का भी त्याग। तो हम ये याद रखें, क्योंकि हम कर्म में आने वाले हैं, हमारा जो रिफ्लेक्शन है तपस्या का, तपस्या हमारी कहाँ दिखाई देती है? ऐसे नहीं है कि हम तपस्या की मुद्रा में बैठे हैं और हम बड़े चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, वो हमारी तपस्या का स्वरूप है? नहीं। बाबा ने कहा है तपस्या माना मौज मनाना, तपस्या मन नाचना और गाना, ये बाबा के महावाक्य है। तो तपस्या माना अगर नाचना गाना मौज मनाना है, तो ऐसा तो नहीं कि हम किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, हम किस संगठन में नहीं आते हैं, हम तो बड़े तपस्वी हैं, ये तपस्या नहीं है। तो तपस्या जब मुझे हम कर्म में रिफ्लेक्शन होता है, हमारी तपस्या जो दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देगी लोगों को, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से। इसलिए क्या करो, उसके लिए हम क्या करें, बाबा ने कहा है कि बच्चे कर्म में योग को शामिल करो। कर्म करते हुए बार बार अपने आप को याद दिलाओ, जैसे मैंने पहले कहा कर्म योगी बनो। ऐसा नहीं सोचना कि कभी कभी क्या होता है, हम सबके साथ होता है, ये अनुभव की बातें हैं, हम सबके अनुभव की बातें हैं। जैसे जैसे ही हम कर्म में जाते हैं, कर्म करने लगते हैं, स्पेशली जब हमारा बौद्धिक काम होता है, और विशेष रूप से जब हमें एक समय की सीमा होती है कि आपको 2 घंटे में ये काम करके देना है, या आपको ये, जैसे आप लोगों में से भाई लोग या कुछ बहनें भी कुछ जो ऑफिस में काम करते होंगे, जिनको डेडलाइंस कहते हैं कि आपको इतने समय में ये काम करके ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक करके भी काम करना होता है। माताओं को भी ऐसा अनुभव होगा जब घर में बहुत से मेहमान आ जाते हैं, 1 घंटा है, बहुत लोगों का खाना पकाना है, तो क्या होता है उस समय, आमतौर से ये देखा गया है हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं, ऐसा होता है। तो हम क्या कहते हैं कि बहुत काम था ना, इसलिए बाबा भूल गया। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, समझो मुश्किल काम था इसलिए बाबा भूल गया, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, अगर मुश्किल काम था उस मुश्किल काम में भी यदि आप बाबा को याद करो तो आपका मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम मुश्किल को बाबा की याद भुला के क्या कर देते हैं, हाँ पीछे वाले बोलो, पीछे वाली माताएं क्या कर देते हैं, क्या होता है, हम उसको क्या कर देते हैं, बोलो पीछे वाली माताएं क्या कर देते हैं, मुश्किल काम को भी और क्या कर देते हैं, सहज करने की बजाय और ही मुश्किल बना देते हैं, होता है ना ऐसा। और करना है हमको सहज, तो हमें सहज करने के लिए, और ऐसा भी नहीं कहना, ऐसा भी होता है ये काम कर ले फिर हम बाबा को याद करेंगे, फिर हम योग लगाने जाएंगे, बहुत आम तौर से ये हमारी एक कॉमन भाषा हो गई है, बस मैं खाना पका लूं, बस इतना सा काम करके आऊं, बस अभी बाबा को याद करने जाएंगे। हम अभी ही बाबा को याद करें, कर्म में साथ साथ रखे ना बाबा को, अगर कर्म में साथ साथ रखेंगे बाबा को तो क्या है, बाबा हमारे साथ हाजिर ही है, तो हमारे लिए कर्म करना कितना सहज हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कर्म करते याद रखो, बाबा करण करावनहार है, बाबा कौन है, करण करावनहार, बाबा मेरा बैकबोन है, बाबा मेरे साथ है, और बाबा ने मुझे इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए दिया है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, कराने वाला वही है। तो हमेशा सोल कॉन्शियस, यानी ये ध्यान रहे कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली, और बाबा मेरे साथ जो मेरा मददगार है। अगर ये बार बार हम अपने मन को ट्रेनिंग देते रहें, बार बार मन को ये कहते रहें, तो ये अभ्यास हो जाएगा। लेकिन ये अभ्यास की बात है, हमने एक बार अभ्यास किया था इस बात का, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम अपनी भाषा में ऐसे कहा कि बार बार हम ये याद करेंगे कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, ऐसा याद करेंगे। तो हमने ये देखा, अभी हम तो सेवा केंद्र पर रहते हैं, लेकिन सेवा केंद्र पर रहते हुए वही सारा दिन सेवा का वातावरण है, योग का वातावरण है। तो हमने ये देखा कि जब अभ्यास वो कॉन्शियसली एफर्ट किया, तो वो कॉन्शियस एफर्ट करने के बाद भी कब वो बुद्धि से खिसक जाता है वो पता ही नहीं लगता, फिर अपने को याद दिलाना पड़ता है। तो बाबा ऐसा ही नहीं कहते हैं कि बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि बहुत बार अभ्यास करने के बाद भी ऐसा होता है कि हम बुद्धि से हमारी खिसक जाता है। बात करते करते, अभी अभी हम आत्मा समझकर बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते कब वो खिसक गया बुद्धि से, सामने वाले को जैसा मेरा उसके साथ संबंध है उसी संबंध से हम उसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो पहला पहला अगर मुझे अपना तपस्वी जीवन बनाना है तो पहला त्याग कौन सा त्याग, देही भान और देही अभिमान का त्याग चाहिए। दूसरी बात जो हमको हमारे जीवन के अंदर चाहिए, क्योंकि अनुभव ऐसा कहता है कि अभी जो है, जो जेनरेशन बाय जेनरेशन जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जाती है, तो प्रायः देखने में ऐसा आता है कि आज मानव का मन जो है ना वो बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी से भाव स्वभाव में आ जाना, जल्दी से फील हो जाना, इस तरह की बातें। ऐसा नहीं पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन अभी जो है वो बहुत जल्दी से ये बातें आ जाती हैं। और देखने में आता जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो क्या होगा, जब फीलिंग में आएंगे तो मनोअवस्था हमारी क्या होगी, विचलित होगी, थोड़ा सा डामाडोल हो जाएंगे, थोड़ा सा हिम्मतहीन हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, जीवन में निराशा आ जाती है। तो अनुभव ऐसा कहता है वर्तमान समय को देखते हुए कि आज आवश्यकता है शक्तियों के, उनको यूज करने की। और ये अगर हम बाहरी वातावरण में देखें तो बाहरी वातावरण में भी हम देखते हैं कि आज शक्तियों की बहुत कमी है। और सेम, क्योंकि हम कहां से आए, वहीं से ही यहां आकर बाबा के बने हैं, और वही चीज आज यहां भी आवश्यकता है शक्तियों की। तो हमें क्या करना है, अपने डेली लाइफ के अंदर, अपनी दिनचर्या में हम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करें, उनको यूज करें। और शक्तियों को हम कैसे यूज करें, जहां मुझे, जब मुझे जो शक्ति चाहिए उस शक्ति को मुझे यूज करना है। क्यों, याद रखना ये शक्तियां हमें अपने बाबा से जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिली हैं, बर्थ राइट के रूप में मिली हैं। किस रूप में मिली हैं ये शक्तियां, बर्थ राइट के रूप में मिली हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कहते हैं ना बाबा। और बाबा सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान, हमको ये राइट के रूप में, यानी ब्राह्मण जन्म मिला तो जन्म मिलते ही मुझे अधिकार के रूप में ये सर्वशक्तियां मिली। राइट के रूप में मिली माना मैं उसको यूज कर सकती हूँ। जैसे आप देखिए कॉपीराइट होता है, आपको मालूम है कॉपीराइट होता है किताबों का। जैसे समझो किसी लेखक ने, किसी व्यक्ति ने किताब लिखी, तो किताब पे अगर आप पहला पन्ना देखेंगे ना, जो बाहर की किताबें होती हैं, हमारे लिटरेचर में नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर की किताबें देखेंगे, पहला पन्ना खोलेंगे वहां छोटा सा सी उसके ऊपर गोल लगा होता है, वो कॉपीराइट का निशान होता है। ये कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट माना इस किताब के जो अधिकार हैं, जिसने ये, जिसके पास ये कॉपीराइट है वही इस किताब में कुछ चेंजेस करना है वही कर सकता है। यदि उस किताब में से किसी को कुछ लेना है उसकी अनुमति के बिना वो नहीं ले सकता है, इसको कहते हैं कॉपीराइट। अब देखिए बाबा ने हमें बर्थ राइट के रूप में ये शक्तियां दी, यानी जो शक्तियां बाबा की हैं उन शक्तियों को यूज करने का कॉपीराइट किसको मिला, किसको मिला, हमको मिला। कम बात है क्या ये, बाबा कहते शक्तियां किसके पास है, बाबा कौन है, शक्तियों का भंडार, सर्वशक्तिमान, उसने मुझे जन्म देते ही ये राइट दे दिया, बच्चे ये तेरा राइट है। आज आप देखिए एक बच्चा जन्म लेता है, जन्मते ही पिता बच्चे को ये नहीं कहता कि तेरा पैसा खर्च करने का अधिकार है, देता है क्या उसको, देता है क्या। और बाबा ने ये शक्तियों का और गुणों का खजाना मुझे देकर कह दिया, बच्चे जन्मते ही तेरा इस पर अधिकार है, जितना तू इसको यूज करना चाहिए उतना यूज कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको यूज नहीं करते। और जब दिल शिकस्त होते हैं तो बाबा को कहते हैं, बाबा अभी आप ही कुछ करो ना। फिर बाबा से हम कैसे, जैसे भक्ति का संस्कार पड़ा हुआ है ना, तो भक्ति के संस्कार के रूप में हम बाबा से मांगने की चेष्टा करते हैं कि बाबा आप ये दे दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो। लेकिन बाबा ने मुझे कॉपीराइट के रूप में मुझे राइट्स दे दिए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, बाबा ने मुझे जन्म से ही ये सारे अधिकार दे दिए, बच्चे तू इनको यूज कर, ये खजाना तेरे लिए खुला पड़ा है, कोई लॉक नहीं है उसके ऊपर, कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर, ना तो सीमा है और ना ही उसके ऊपर ताला है, जितना तुम चाहे उसको यूज कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको यूज ही नहीं करते। तो इन शक्तियों को यूज करो। समझो मुझे कोई ऐसी बात आई मेरे सामने, उदाहरण के तौर पे किसी ने मुझे कुछ कह दिया, ठीक है, होता है ना, कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, सबके संस्कार अपने अपने हैं, तो मुझे लगता है इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, गलत कहा मुझे ये। अब मुझे उस समय किस चीज की आवश्यकता है, कौन सी शक्ति की आवश्यकता है सहन करने की, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि उस समय अगर हम उसको जवाब दे दें वो बात वहीं पर ठीक हो जाएगी, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब कहीं कहीं पर जहां मुझे सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है तो हम सहन शक्ति को यूज करो। लेकिन याद रखना ये शक्तियों को यूज करने का भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे एक बच्चा यदि वो बहुत समय से वो माता पिता की आज्ञा ना मानता हो तो समय पर वो क्या आज्ञा मानेगा। अब मैंने इतने समय से शक्तियों को यूज नहीं किया और अब मुझे जरूरत पड़ी और मैं शक्तियों को यूज करूं कि शक्ति तू आ जा, वो आ जाएगी क्या मेरे पास, आएगी क्या मेरे पास वो शक्ति, नहीं। इसीलिए उसको यूज करना शुरू करो। हम जितना जितना इसको यूज करेंगे, उसका यूज करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप करके देखिएगा इसको। जैसे भक्ति में देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उसको कहते हैं इनवोकिंग ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ऐसा कहते हैं आवाहन करना उनका। तो ऐसे ही जब मुझे जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, आप उस शक्ति को एक सेकेंड उस परिस्थिति से अपने आप को डिटैच करो और डिटैच करके आप उस शक्ति का आवाहन करो। आप बाबा को सर्वशक्तिमान के रूप में याद करते हुए उस शक्ति को अपने पास आवाहन करो और आवाहन करते हुए आप देखेंगे आपको कुछ ही समय में, अब जितना जैसा आपका पुरुषार्थ होगा उस हिसाब से आपको लगेगा कि जैसे आपके अंदर वो सहन करने की शक्ति आई। लेकिन ये धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती है, इसके लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो ये सहन करना यानी ये जो शक्तियों को यूज करना, चाहे वो सहन शक्ति हो, चाहे वो धैर्यता हो, चाहे वो समाने की शक्ति हो, ये शक्तियों की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। तो इन शक्तियों को यूज करना। लेकिन हम क्या करते हैं, अभ्यास करने की बजाय हम थोड़े से अलबेले हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अलबेला नहीं होना है, हमें अभ्यास करना है। जब अलबेलापन आता है, एक तो पहले से हमारे पास कोई घटना आई, कोई ऐसी बात आई, शक्ति को मैंने यूज नहीं किया और अलबेले हो गए, वो मुझे और कमजोर बना देगी और कमजोर आत्मा फिर तपस्या कैसे कर पाएगी। इसलिए अगर अपना तपस्वी जीवन बनाना है, क्योंकि अभी आवश्यकता है बाबा के साथ कनेक्ट होने की, बाबा के साथ मिलन मनाने की, चलते फिरते बाबा का अनुभव करने की, क्योंकि समय ऐसा आएगा वो किसको वो कैच होगा, बाबा ने कहा था ना बच्चे, समय जब ऐसा आएगा, अंतकाल का समय होगा, किसी को टचिंग होगी, किसी को कैचिंग होगी। वो टचिंग और कैचिंग कैसे होगी? जिसका बाबा का बुद्धि से तार जुड़ा हुआ होगा। और बुद्धि से तार कब जुड़ा हुआ होगा? जब मेरी बुद्धि जो है बाकी सब बातों से हटके बाबा में लगी हुई होगी। और वो तब लगेगी जो दुनिया में आने वाली बातें हैं उन बातों से मेरा मन जो है वो डिटैच होगा। और बाबा ने कह दिया है जितना समय समीप आएगा उतना परिस्थितियां क्या होंगी, उतनी परिस्थितियां कड़ी होंगी, कड़े विघन होंगे। ये सब होगा। ये नहीं सोचना कि मेरी समस्या जो है बहुत कड़ी है या मेरे पास विघन आता है बहुत कड़ा है। कई बार कई क्या सोचते हैं कि मेरे पास ही ऐसा क्यों आता है, मेरा ही कड़ा हिसाब किताब क्यों है, मेरा ही परिवार ऐसा क्यों है, मेरा ही शारीरिक कर्म भोग ऐसा क्यों है। बाबा ने एक बार एक महावाक्य कहा था कि कड़ा हिसाब किताब आपको शक्तिशाली बनाता है। याद रखो ये बात, कड़ा हिसाब किताब शक्तिशाली बनाता है। ऐसे से बाबा के महावाक्य हैं। तो ये नहीं सोचो कि मेरा कड़ा बंधन है, मेरे पास ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही सब कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, मुझे ही ऐसा परिवार क्यों मिला है, क्या मेरा ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है और हर कल्प में मेरा ऐसा ही पार्ट होगा। ये नहीं सोचो। लेकिन कड़ा हिसाब क्या करता है? ये मुझे शक्तिशाली बनाता है। ये याद रखें। और तीसरी बात जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो है विशेष रूप से संतुष्टता। जैसे आज हम देखते हैं स्पेशली यंग जेनरेशन जो है दुनिया में, अगर आप देखेंगे जैसे मैंने बताया ना जेनरेशन बाय जेनरेशन आज लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, यानी उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और इतनी इच्छाएं, बहुत थोड़ा सा काम किया प्राप्ति बहुत ज्यादा चाहिए उनको, और जब वो नहीं मिलती है तो वो जल्दी से असंतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी क्या है, हमारे मन में आता है समझो हम ज्ञान में आए, मुझे 2 साल हुए बस ऐसा मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन बाबा कहते हैं आप पुरुषार्थ करते जाओ, फल पाने के लिए हम एक्साइट ना हो जाएं, फल पाने के पीछे इतना ना पड़ जाएं कि हम अपना पुरुषार्थ करना ही भूल जाएं। इसीलिए अपने जीवन के अंदर हमें क्या चाहिए, वो चाहिए संतुष्टता। कभी कभी हम ये जैसे अभी मैं पहले ही बता रही थी, कभी कभी हम क्या देखते हैं जो हमारे आसपास की परिस्थिति होती है, हमारी पारिवारिक परिस्थिति होती है, या कहीं हम दूर रहते हैं या हमारा प्रोफेशन इस प्रकार का होता है हमके बहुत समय नहीं मिल पाता है, उसको लेके हम असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन बाबा ने कह दिया है कि बच्चे जो कुछ भी है, जैसा भी है, जहां भी आप हैं, ड्रामा अनुसार वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये बाबा के महावाक्य है ना, ड्रामा अनुसार वो बिल्कुल एक्यूरेट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करें। वहां से अगर हमें कुछ उनको चेंज करने का हमें कोई मार्जिन है और हमारे पास एक स्पेस है, एक हमारे पास मार्जिन है कि हम वहां उसको चेंज कर सकते हैं, तो हम उसके लिए पुरुषार्थ करें। लेकिन उस बात को सोच सोच के हम डिससेटिस्फाई ना हो। जो असंतुष्टता है जीवन के अंदर क्या लेके आती है, असंतुष्टता जीवन के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। जो डिससेटिस्फेक्शन है वो क्या क्रिएट करती है, डिस्टर्बेंस। और जहां पर ये डिस्टर्बेंस माना मन में हलचल होगी, और डिस्टर्बेंस क्या लेकर आती है अपने जीवन के अंदर, वो हम जब डिस्टर्बेंस हो जाती है तो जीवन के अंदर निराशा आती है, एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन आता है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हिम्मतहीन हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया जहां हिम्मतहीनता होगी, जहां निराशा होगी, वहां पर हमारा योग लग नहीं सकता। और उस समय आप तपस्या आप करेंगे भी ना, अनुभव ऐसा कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई बात को लेके, किसी भी बात को लेके अगर हम निराश हो गए और निराश होने के बाद सोचते हैं, थोड़ा बहुत समय हमारा बीत गया, काफी सारा समय हमने वेस्ट कर दिया, वेस्ट करने के बाद बाबा की मुरलियां रोज सुनते सुनते हमको याद आता चलो अभी योग लगाएं, और योग लगाने बैठते हैं तो हमारा योग नहीं लगता है, उसमें भी बाबा को हम वही बातें सुनाते हैं जो हमारे जीवन के अंदर दुखी, जिसने हमारे जीवन के दुखी बनाया है, यानी जिसको बाबा कहते याद नहीं करते फरियाद करते हैं, तो वो कोई योग तो नहीं है ना। कनेक्शन माना क्या? कनेक्शन माना क्या? मुझे एनर्जी मिलती है, करंट मिलता है, शक्तियां मिलती हैं। योग क्या है? सिंपल, बहुत सिंपल है योग, डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट, बस यही तो योग है। लेकिन हमने सोच सोच के उसको डिफिकल्ट बना दिया है। डिस्कनेक्ट कहाँ से करना है और कनेक्ट कहाँ करना है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। मुझे डिस्कनेक्ट कहाँ से करना है, कहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, बोलिए कहाँ से डिस्कनेक्ट करना है? बुद्धि को कहाँ से मुझे डिस्कनेक्ट करना है? बाहरी बातें उनसे डिस्कनेक्ट करना, जो व्यर्थ बातें, जो मन में जितनी भी बाहरी जगत के संकल्प चलते हैं, चाहे वो देहों के हों, संबंधों के हों, चीज वस्तु के हों, कोई प्राप्तियों के हों, कोई इच्छाएं हों, उनसे तो डिस्कनेक्ट करना है ना बुद्धि को। और कनेक्ट कहाँ करना है? बाबा में। लेकिन बुद्धि क्या होती है? बाबा से कनेक्ट होने की बजाय वहां से कनेक्टेड रहती है। अब उधर से कनेक्टेड रहेगी और हम कहें बाबा आपको याद तो करते हैं, लेकिन हमको ना करंट तो मिलती नहीं, सकाश तो मिलती नहीं, वो कैसे मिलेगी? हमने पहले उसको वहां से डिस्कनेक्ट किया। आप देखिए जहाज भी जब तक वो एंकर से, लंगर उससे जो जिससे बंधा होता है ना, वो लंगर से बंधा होता है, अगर उसको पूरा अलग ना किया जाए तो वो आगे तो नहीं बढ़ता है ना। इसी प्रकार जब तक हम वहां से, हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं किया, वहां से हटाया नहीं, तब तक हम बाबा से हमारी बुद्धि की तार जुड़ेगी कैसे? और बुद्धि की तार अगर जुड़े नहीं तो हमें योग लगाने का आनंद नहीं आता, और जब योग लगाने का आनंद नहीं आता तो घंटा आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा समय तो समझो घंटा डेढ़ घंटा बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर रुचि नहीं रहती, थकावट महसूस होती है, फिर दूसरी दूसरी बातें, किसी को पानी पीना याद आता है, किसी को उठना याद आता है, किसी को इधर उधर देखते हैं, फिर या तो फिर लास्ट में उठ के ही चले जाते हैं। जो तपस्या 2-3 घंटे बैठ के तपस्या हम करें, वो तपस्या नहीं हो पाती। इसीलिए जो बाबा कहते हैं, चाहे अशरीरीपन का अभ्यास कहो, चाहे बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास कहो, लेकिन ये जीवन में जो बातें हैं, जो हमारे व्यवहार के अंदर, क्योंकि आम तौर से भाई बहनों की ये शिकायत रहती है कि व्यर्थ बुद्धि से जाता नहीं है, वो एक अलग विषय है, लेकिन व्यर्थ बुद्धि से क्यों नहीं जाता है, उसका मूल कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि की रग कहीं अटकी हुई है, हम अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हैं, और जब संतुष्ट नहीं है या दूसरों से कहीं संतुष्ट नहीं है, उनको लेकर मन में बातें चलती हैं, ना तो हम बाबा ने जो हमें इतना ज्ञान दिया है, ज्ञान तो हमारी बुद्धि में सारा आ गया, किसी को कहो जाके ज्ञान सुना के, आप इतना अच्छा ज्ञान सुना कर आते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर एप्लीकेबल करने की बात आती है तो क्या होता है, तो अपने ऊपर उसको जब अप्लाई करना होता है, जब स्वयं पर यूज करना होता है, तो बुद्धि से वो कब ज्ञान खिसक जाता है पता ही नहीं लगता। मेरे पास तर्कश तो है, लेकिन उस तर्कश के अंदर जो बाण हैं वो दूसरों के लिए हैं, लेकिन स्वयं के लिए भी मैं उन बाणों को यूज करूं, वो समय पर हमें याद ही नहीं आते, समय पर याद ही नहीं रहता कि वो तर्कश मेरे पास ही है, उसमें से बाण निकाल के मैं यूज तो करूं उसको, वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है कि इस समय आवश्यकता, जैसे बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, हम सबको इस समय किस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी ज्यादा से ज्यादा, हम जैसे यहाँ पर आए हैं विशेष मधुबन में, कई तो बहुत मुश्किल से आते हैं, कैसे समय निकाल कर आते हैं, हम देखते हैं कई तो जैसे बताया ना, जोड़ जोड़ के अपना धन जोड़ जोड़ के टिकट का पैसा निकाल के बाबा के लिए यहाँ पर खास आते हैं, जब इतना समय मेहनत करके यहाँ पर आते हैं तो क्यों नहीं इस समय को हम यूटिलाइज करें, भले कितनी भी भीड़ हो जाए, हर्जा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर 10, 20, 30 हजार हों, उसमें भी हम अपने आप को एक बाबा के साथ अकेला महसूस कर सकते हैं, और हम ये हमारे ऊपर है, और हम अकेले होते हुए भी भीड़ में हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, ये हमारी मनोस्थिति है। मैं अकेली होते हुए भी भीड़ में हूँ और मैं भीड़ में होते हुए भी अकेली हूँ, ये हमारे ऊपर है। हमको नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, कोई धक्का मार रहा है या कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, ये हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। हमको स्वयं को ठीक रखना है, और जितना जितना हमारे हम स्वयं ठीक होंगे तो स्वतः ही क्या होगा, हमारे वाइब्रेशंस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो दूसरों तक पहुंचेंगे, और हम वातावरण बनाने वाले हैं। यहाँ का वातावरण भी क्रिएट करने वाला कौन है, हम जो बाबा के बच्चे यहाँ पर आए हैं, हमसे ही तो वातावरण बनता है ना। तो इसलिए हमें दूसरों को नहीं देखना है कि ये आगे जा रहा है तो मैं भी आगे चली जाऊं या मैं भी आगे चला जाऊं, ये हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं को देखें। अभी दूसरों को देखने का समय समाप्त हुआ, अभी हम स्वयं को देखें, स्वयं का पुरुषार्थ करें, हम स्वयं को ठीक करें, दूसरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओम शांति। Thank you.